ऊपर में बैठे हैं, छत के ऊपर में, और यही से तुमका जैसे ओम
पितृदेवाय
स्वाहा कह दो तो वहां पर उनका पेट भर जाए। यदि यही तो नहीं भरता है तो स्वर्ग कहां देने, कहां वहां को भरेगा भाई? कोई ठीक है मरने पर तब इसमें तो खिलाए नहीं और उसे बात मारने के बाद से बात मत करो है बात, ये असत्य है सिद्ध किया है परोक्ष बात। जैसे एक बदलाव के कैसे दिल्ली में तुम्हारी भैया बैठी है और हमने तुम्हारे उसके बेटे को मैंने कह लिया तुम्हारी भैया की ऐसी क्या होगा, वो गाड़ी चली गई वहां पर कलकत्ते में अभी एक मिनट के अंदर में। अरे जाने में सब पूछना है तो समय भी शब्द भी होगा तभी कितना एक घंटा तो लग जाएगा कलकत्ता जाने में, मन की गति से जाएगी तभी तो समय लगेगा। और वो जाएगी कि नहीं हमारी जो वाणी है जो तुम्हारी भैया की वहां दिल्ली पहुंच गई या अमेरिका पहुंच गई, यदि तुम इसको मानता है तो वो उसको क्यों नहीं मानता ये स्वर्ग में पहुंचेगी? ये संबंध की शक्ति है, ये भी एक गोली का साधारण का इतना फल है तो मंत्र का फल क्या नहीं होगा। इसलिए परोक्ष बात है स्वर्ग इत्यादि है, यहाँ पर जो हमको स्वर्ग अथवा जो दुख नहीं यहाँ पर मिलता है, जो तुमने जैसे कर्म किसी का 10 आदमी का 20 आदमी का मर्डर तुमने किया, एक साथ में यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं और उनको 1,00,000-10,00,000 रुपया जज को दे देते दे, जैसे मुख से लाख टपकने लगेगी और उल्टा दिख देगा करके छोड़ देगा काम हो गया, किंतु वो तो सब की तरह में पीस देगा। इसलिए परोक्ष बात है, क्यों हम देखते हैं इसको अनुभव करते हैं। एक आदमी अंधा होकर के आए, एक आदमी लंगड़ा होकर के आए, एक आदमी को सब लोगों ने मिलकर के उसको जीवित जला दिया, ये देखते हैं उसका कोई दोष नहीं, तो ये कैसे हुआ? ये परोक्ष बात देखते हैं कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो भक्ति का जन्म हुआ, एक ही समय एक बीड़ा जी के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ और एक हुआ निरा सुदामा के घर में, सुदामा के घर में मने गया के घर। और उसको जन्म से ही पूर्ण था, उसका एक हाथ नहीं था, उसका मुख सिला हुआ था, तो बताओ क्या हुआ? उसने क्या दोष किया? अभी तो जन्म ही नहीं होता दोष, उसका क्यों ऐसा हुआ? गुंगा लंगड़ा लल्ला को क्या हुआ? और वो बड़ा सुंदर के रूप में बहुत सुंदर सुकान और बिरला जी के घर में पैदा, क्यों? ये सब है परोक्ष बात, किंतु परोक्ष बात से भी काम नहीं चलेगा। जीव आवागमन का ये जो है ये चक्र चलता रहेगा, साथ साथ में सुख भी, ये सब। इसलिए और आगे बढ़ो तब आया अपरोक्ष शंकराचार्य इत्यादि और सर दर्शनाचार्य में 5, ये सभी ये अपरोक्ष बात है। अत्यधिक दुख निवृत्ति रेव मुक्ति, उन्होंने मुक्ति माना, जैसे मुक्ति यदि हो गई संसार से फिर जन्म मरण है, इसलिए मुक्ति शंकराचार्य ने कहा। पातंजलि जी ने कहा, कणादादि ऋषियों ने कहा, कपिल जी ने कहा, गौतम इत्यादि प्रत्यक्ष बार है उसका चार बार का। परोक्ष बार किसका है? जैमिनी इत्यादि परोपकार। इसमें शंकराचार्य के जो पीछे से शिष्य रहे थे मंडल मिश्र, ये पहले इसी में थे, वो ऐसा मंत्र करते थे जो वर्षा होने लगती थी यज्ञ से। अरे गान से ही वर्षा हो जाती है तो यज्ञ की तो बात छोड़ दो, अभी भी यज्ञ से वर्षा हो सकती है, होती है तो कराते हैं ये सब। और परोक्ष बात कौन है? शंकराचार्य है और कपिल और अशोक दर्शन। इसके बाद में अपरोक्ष हुआ, अपरोक्ष में भी मुक्ति से भी मुक्ति में आदमी यदि पत्थर हो गया तभी यहीं पर मुक्ति मिल गई, सुख और दुख से रहित तो होना ही यदि मुक्ति है तो इस जगत में पत्थर बन जाओ, बस हो गया मुक्ति। पत्थर को न सुख की अनुभूति न दुख की अनुभूति। शंकराचार्य कहते हैं यदि दुख रहेगा तो सुख भी रहेगा, सुख रहेगा तो जरूर दुख रहेगा, इसलिए सुख दुख दोनों की जरूरत है। यही गौतम बुद्ध का विचार था, तो बुद्ध देव थे, ईश्वर बुद्ध नहीं, भगवत बुद्ध नहीं, शास्त्र इसलिए प्रछन्न बहुतवाद शंकर जी का विचार है। उनका विचार था ये जगत जीरो से आया है और जीरो में मिल जाएगा, अर्थात शून्य से जगत पैदा हुआ, शून्य से में जगत मिल जाएगा, सभी अभी शून्य है, पीछे भी शून्य रहेगा और अभी भी है, पहले भी था शून्य, कुछ है ही नहीं है, जो देख रहे हैं वो सब शून्य है, बताओ तो हम सब देख रहे हैं और सब शून्य। शंकराचार्य ने दूसरी भाषा में कहा कि हम सभी ब्रह्म है, उनका ब्रह्म क्या है, क्या उनका ब्रह्म क्या है, अवांग मन सो गोचर और निर्वचनीय सत असत सत असत सबसे विलक्षण, और क्या सत भी नहीं है असत भी नहीं है, सत असत वो भी नहीं है, तो क्या है अनवचनीय है, यही यही निर्विशेष ब्रह्म, यही शून्यवाद है, सत भी नहीं असत है तो शून्य, इसलिए वो भी शून्यवाद है, इसमें भी सुख नहीं है, जिनका सत भी है वो भी। अब इसके बाद में ले गए अधोक्ष, माने इंद्रियों से अतीत, वो क्या भगवान इंद्रियों से अतीत सर्वशक्तिशाली ऐश्वर्यमय जगत के प्रभु, शिष्ट स्थिति प्रणय सबके करने वाले ऐश्वर्य सर्वशक्ति से पूर्ण सर्वशक्तिमान वही सब जगत के सब, उनकी सेवा ही अधोक्ष सेवा, जीव का अपना एक स्वरूप है, उस तरफ से उनको शांत दास्य और अर्थ वात्सल्य या सत्य भाव से मुक्ति से बनाई, वो प्रभु है हम दास। प्रभुपाद जी ने कहा ये भी ठीक है, यहां से यहां की वो और यह है ठीक है, किंतु यही तक सीमित नहीं है, यह भाव क्रमशः ऊपर जाने पर कम जाता जाता है, सड़ेश्वर जो शालित थे अब कुछ मधुरत्व आने लगा, अयोध्या में ये कुछ ऐश्वर्य कम हुआ, मार्मिक कुछ आया, इसे भी जब ऊपर चले बोलो गोलोक में जब गए तो ऐश्वर्य कुछ कम हुआ और माधुर्य कुछ कुछ उसमें आया, उसे जब गए तो और भी माधुर्य थोड़ा सा बढ़ा, ऐश्वर्य कम हुआ उसे भी माधुर्य और बढ़ गया, हाफ हाफ तो आया मथुरा, मथुरा से भी जब ऊपर चला तो ऐश्वर्य और कम गया और माधुर्य बढ़ गया, ये इसको कहते हैं अप्राकृत, अप्राकृत मैंने किया मधुर भाव की जहां पर विशेषता है, मधुर रूप में कृष्ण को अपना प्रियतम अपना पुत्र अपना सखा या ऐसा मान करके जो भजन करते हैं परावृत से या कृष्ण से बढ़कर उसको कहते हैं सेवा, इसी को देने के लिए प्रभु आए थे चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, इसी का आस्वादन हमारे कृष्ण ने किया, वही कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु आए थे, प्रभु जी ने इस चीज को देने के लिए जगत में आए, किंतु बहुत कम लोग इसके पाए गए जो कि इसको लेते हैं और उनका सारा समय चला गया इन चीजों को साफ करने में, क्या क्या प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष ये सब काटने में चला गया और अध्यक्ष की स्थापना करने में लग गया, तब तो वो समझेंगे ऊपर, मैं तो नहीं समझ सकता, इसलिए प्रभुपाद की एक विशेषता है सारे जीव को वो भगवान की सेवा में लगा करके और सबको सुखी करना चाहिए, उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। भट्टाचार्य जी ने भक्ति का अवलंबन किया, परमानंद आचार्य ने भक्ति का अवलंबन किया, शरीर एक से एक नीचे आएगा। जड़त्व, जड़त्व कहते हैं क्या, एकदम अब मरने के करीब आ गया, टट्टी हो रही है, ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट रोग से लेकर के शुगर से लेकर के जो कुछ है सभी रोग उसके अंदर है। विशेष करके वृद्धावस्था में अगर बैठे 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 ये सब रोग हो जाएगा एक साथ में, सब काशी सर्दी सभी कुछ उसमें हो जाता है। उस समय में सोचता है जो है प्रभु हमको उठा लीजिए अपनी जड़ में लीजिए और बहुत हो गया अपने बस, उस शरीर को कहते हैं जड़ रोग। कैंसर हो गया हम मरने वाले हैं, कल परसों में परसों में कल मरेंगे, जड़ रोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसे शरीर को भी यदि हमने अर्पण कर दिया अंत समय में, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो भी काम बन जाएगा, किंतु मनुष्य ऐसा नहीं करना चाहता। अरे कुछ तो अभी तो करो, जड़त्व शरीर में अभी अपने को अर्पण करो भगवान के लिए, यदि मनुष्य करेगा तभी उसका फल होगा। तुम कहो जो मैं तुम्हारा हूं, एक बार कहो कृष्ण तुम्हारा हूं, यदि बोले एक बार कृष्ण तारे माया बन जाएंगे, जब तुम पार करेंगे एक बार कहो तो। उस समय में गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, कितनी मैया, यह सभी उस समय याद रखते, किसी का पल्ला छूटता नहीं, एकांतिक रूप में उनका भजन नहीं होता। कहते हैं ऐसा हम आए हैं इस जगत में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस जगत में है जिसको अभाव किसी प्रकार का नहीं है। ऐसा जगत में जो कोई ना कोई अभाव उसको हो, कोई ना कोई उसको दुख हो, है जगत में, चाहे लड़के से लेकर के एकदम, चाहे निम्न से चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, अथवा राजा, रंग से राजा, कोई ऐसा है जिसको ये कहे कि हमको सब कुछ पूर्ण हो गया है और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई दुख नहीं है, कोई कहे कर सकता है? नहीं। हाँ एक आदमी कर सकते हैं, एक आदमी वह कर सकता है जो संपूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रित, उनके चरणों में शरणागत, तो वो कर देगा कि हम पूरे सुखी, हमको तो अभी ये भी नहीं कहेगा कि जरूरत नहीं, कहेगा कि हमको कृष्ण भक्ति का अभाव, जिसको भक्ति है तो कहेगा हमको प्रेम का अभाव, वो भी ये कहे। श्रीमती जी से पूछे जैसे आपको क्या भाव, तो कृष्ण में हमारी रुचि ही नहीं, इसलिए एक परमार्थिक वाले कहें कर सकते हैं, किंतु वो उनका भी कहना छोड़ दो, वो लौकिक चीज नहीं है, इसलिए वो नहीं कहेंगे। जगत में कोई भी ऐसा नहीं है दुखी न हो और अभाव, हम लोगों का यह जीवन दुख को दूर करने में और अभाव को दूर करने में ही संपूर्ण एनर्जी मत नष्ट हो, जाएगी नहीं है, चाहे तुम लाख चेष्टा करो, समस्त एनर्जी लगाओ चेष्टा करो, किंतु न तो दुख जाएगा और न तो अभाव, यह होगा। क्या करना है, इस जीवन में रहते मनुष्य जीवन में रहते हुए एक निर्धारित करो कि हमको क्या करना है, क्या करना है, यदि तुम्हारा गोल निर्धारित हो गया, यदि तुम्हारा उद्देश्य ठीक निर्धारित हो गया, तो चलने में बेसी देर में अब समय नहीं लगेगा। इस जगत में रहकर के यही निर्धारित करना है कि हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है, ये यदि ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक हो गया, तो गाड़ी चल देगी, पहुंच जाएगी स्टेशन पर। और यदि गए हम स्टेशन पर, सोचा कि भाई कहाँ का टिकट लेना है, कलकत्ता का लें, काश्मीर का लें, अथवा कहाँ का मैं टिकट, अभी ठीक ही नहीं हुआ कहाँ का टिकट, कहाँ हमको जाना है, स्टेशन पर पहुंच गया, कोई ठीक नहीं। इसलिए इस जीवन में ये तो ठीक हो जाना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, क्या करना है, हमारा जीवन का गोल क्या है, जब वो ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक कर देंगे, और यदि वही गोल ही नहीं ठीक हुआ, इसलिए मनुष्य जीवन रहते हुए ठीक हो, ये कैसे होगा, जो ऐसे महापुरुष वो इस चीज को ठीक कर देंगे, तो वो क्या करना है, वो क्या करना है, हमारा कृष्ण प्रेम ही जीवन का लक्ष्य, ये भी धुंधला रहा, कृष्ण प्रेम चाहिए भी धुंधला है ना, साधारण लोगों के लिए तो ठीक हो जाए, कृष्ण प्रेम कृष्ण ही से हमारा संबंध है और कृष्ण की सेवा करने से जुड़ने में वही हमारा उद्देश्य है, किंतु अभी परमार्थ के लिए शुद्ध धुंधला तस्वीर, धुंधली तस्वीर, क्या कैसा प्रेम चाहिए, पांच प्रकार के रतियां, पांच प्रकार के प्रेम, उसमें कौन सा चाहिए, कौन सा, ये बहुत बड़े ऊंचे सौभाग्य मान लो, सात आठ कौन भगवान करने ये भी ठीक हो जाए, राम की या कृष्ण की या किसकी करनी, तब से देखेंगे एक ही चीज है, न राम है न कृष्ण है, सब एक चीज है। उसको राम कहिए या कृष्ण कहिए या, किंतु उसी को अब हनुमान और शंकर कहिए तो गड़बड़ हो जाए, वो सब एक नहीं। किंतु उसमें भी एक होने पर भी कृष्ण से ही सबका उद्गम है, ऐसा समझो। सबका उद्गम स्थल क्या है? बस एक मात्र उस कृष्ण के प्रति कैसी हो, पांच प्रकार के रति में से एक कोई रति हो। उस रति में भी अभी अभी स्पष्ट नहीं हुआ, अभी और कुछ स्पष्ट करना है, इसके अनुगत्य में वैसा चाहते हैं, तब वो धीरे 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 और स्पष्ट करते, जितने ही भजन करते जाएंगे तब जाकर के भाव स्थान, तब फिर जाकर के प्रेम स्थान। इस तरह से प्रभुपाद का ये विचार था, इसमें सभी लोग प्रतिष्ठित हों, धीरे धीरे उसके तरफ में बढ़े। आज उनके चार में हम लोग उनके कुछ बात इस वर्ष अभी दे रहे हैं,
तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हा देवी काकुभर गदगद यात्यवाचा जाची निपत्त भुवि दंडवत उद्भटार्ती अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विकेतो गणे गणनं विधे। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरं। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिवान्। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये मां च। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये मां च। तुत्त लोग चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी के गौ रूप में आने का कारण बतलाते हुए उनकी तृतीय वंशा के लिए हम लोग कुछ अनुशीलन कर रहे हैं। पहली वंशा क्या है? और द्वितीय की तृतीय तो इसके लिए उसका स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण दोनों बतलाए थे। भक्ति में भी ऐसे ही स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों यदि हम पालन करेंगे तो भक्ति होगी। कोई आदमी स्वरूप लक्षण तो कर रहा है किंतु तत्व लक्षण उस